एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं थोड़ी विवादास्पद किताब पर बात करेंगे।
हाँ बिल्कुल, जॉन जे मीयरशाइमर की किताब है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, हिंदी में कहें तो महान शक्ति राजकारण की करुणांतिका।
और ये किताब सीधा सवाल उठाती है ना कि दुनिया की ये जो बड़ी ताकतें हैं, ग्रेट पावर्स जिन्हें कहते हैं, वो आखिर क्यों हमेशा मतलब एक दूसरे से उलझती रहती हैं।
सही बात है, क्यों ऐसा होता है कि शांति सब चाहते हैं पर फिर भी वो ताकत बढ़ाने की होड़ और झगड़े में फंस जाते हैं।
और देखिए, आज के माहौल में ये सवाल कितना जरूरी हो गया है। चीन का दबदबा बढ़ रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दुनिया भर में तनाव है।
हाँ,
तो ऐसे में मीयरशाइमर का जो नज़रिया है, जिसे आक्रामक यथार्थवाद या ऑफेंसिव रियलिज्म कहते हैं, वो हमें इन चीज़ों को समझने का एक अलग फ्रेमवर्क देता है। थोड़ा सख्त ज़रूर है, पर शायद ज़्यादा हकीकत के करीब।
तो चलिए आज इसी नज़रिए को थोड़ा और खोलकर देखते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं।
बिल्कुल।
तो सबसे पहले ये जॉन जे मीयरशाइमर है कौन, थोड़ा इनके बारे में बताइए।
हाँ, तो जॉन मीयरशाइमर शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, और मतलब आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लिखने बोलने वालों में उनका नाम काफ़ी बड़ा है, बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं।
और उनकी बैकग्राउंड भी काफ़ी दिलचस्प है जैसा मैंने पढ़ा।
हाँ वही, एक तरफ तो कॉर्नल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, मतलब अकेडमिक रूप से बहुत मजबूत है, और दूसरी तरफ वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकेडमी से पढ़े हैं और अमेरिकी वायुसेना में ऑफिसर भी रह चुके हैं।
अच्छा, तो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का अनुभव है।
बिल्कुल, ये जो मेल है ना अकेडमिक ज्ञान और सैन्य दुनिया की जमीनी समझ का, ये उनके विश्लेषण को एक एक खास किस्म की धार देता है। वो सिर्फ हवा में बातें नहीं करते लगते।
सही कहा, और इसीलिए शायद वो ये किताब द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स लिखने के लिए इतने सही व्यक्ति थे। ये उनका सबसे जाना माना काम है।
हाँ, इसी में उन्होंने अपना वो सिद्धांत आक्रामक यथार्थवाद पूरी तरह से पेश किया है। उन्होंने केनेथ वॉल्स जैसे जो पुराने यथार्थवादी विचारक थे, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन वो एक ज्यादा कह सकते निराशावादी नतीजे पे पहुंचे।
उनकी एक खासियत ये भी है शायद कि वो अपनी बात बहुत साफ और सीधे रखते हैं, कोई लाग लपेट नहीं।
बिल्कुल, मुश्किल आइडियाज को भी आसान भाषा में समझा देते हैं, और हाँ, भविष्यवाणियां करने से भी नहीं हिचकते, चाहे वो सुनने में अच्छी ना लगे। चीन को लेकर उन्होंने जो सालों पहले चेतावनियां दी थी, वो आज देखिए कितनी सच लग रही हैं।
वो इस पर ज्यादा जोर देते हैं कि दुनिया असल में कैसे चलती है, बजाय इसके कि कैसे चलनी चाहिए।
एग्जैक्टली।
तो चलिए अब किताब के मेन आइडिया पर आते हैं। ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है, इसका जो मूल तर्क है वो क्या है?
देखिए, मीयरशाइमर का जो सबसे केंद्रीय विचार है, जिसको वो आक्रामक यथार्थवाद कहते हैं, वो ये है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है ना, इसकी बनावट ही ऐसी है।
बनावट मतलब?
मतलब दुनिया में कोई एक सुपर बॉस नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो इस बनावट के कारण जो बड़ी ताकतें हैं, वो मजबूर हो जाती हैं लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। उनका आखिरी मकसद सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि आधिपत्य हासिल करना होता है।
आधिपत्य यानी अपने इलाके में बॉस बनना।
हाँ बिल्कुल, अपने रीजन में इतने ताकतवर बन जाना कि कोई दूसरा देश उन्हें चुनौती देने की सोच भी ना सके।
और यहीं पर वो त्रासदी या ट्रेजेडी वाली बात आती है ना, ये दुखद क्यों है?
दुखद इसलिए है, मीयरशाइमर कहते हैं, क्योंकि देश भले उनके नेता शांति चाहते हों, इस सिस्टम के दबाव में आकर आक्रामक दिखने लगते हैं। वो अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो कदम उठाते हैं, जैसे हथियार जमा करना, वही दूसरे देशों को डराता है।
अच्छा,
और फिर वो भी वही करते हैं, और नतीजा संघर्ष। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा पिंजरा, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है।
मतलब आप सोच समझ कर अपनी भलाई के लिए कदम उठा रहे हैं और वही आपको अनजाने में लड़ाई की तरफ ले जाता है?
ये तो वाकई सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, तो किताब यही तर्क स्थापित करती है। पहले कुछ बुनियादी धारणाएं बताती है, फिर इतिहास से उदाहरण देती है नेपोलियन के जमाने से लेकर कोल्ड वॉर तक, और फिर भविष्य पर, खासकर चीन पर, इस थ्योरी को लागू करती है।
तो एक तरह से वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का कोई यूनिवर्सल नियम खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ, कुछ ऐसा ही, एक कालातीत नियम। चलिए तो किताब के कुछ मुख्य हिस्सों पर थोड़ी और बात करते हैं, विस्तार में नहीं पर सार समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में, परिचय में, वो क्या कहते हैं?
हाँ, परिचय में वो बताते हैं कि उनका सिद्धांत बाकी सिद्धांतों से अलग कैसे है। जैसे वो कहते हैं कि जो उदारवादी हैं, लिबरल्स, वो उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी फैलेगी, व्यापार बढ़ेगा, तो देश करीब आएंगे, शांति होगी।
हाँ, ये तो कॉमन सोच है।
फिर वो केनेथ वॉल्स जैसे रक्षात्मक यथार्थवादियों का जिक्र करते हैं, जो मानते हैं कि देश सिर्फ ठीक ठाक ताकत चाहते हैं, बस इतनी कि सुरक्षित महसूस करें।
अच्छा,
लेकिन मियरशाइमर कहते हैं नहीं, देश कभी संतुष्ट नहीं होते, वो हमेशा और ज्यादा ताकत चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से सबसे ज्यादा ताकतवर होना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित होना है।
समझ गया, तो ये हमेशा और ज्यादा वाली बात ही फर्क लाती है।
बिल्कुल। इसके बाद आता है अध्याय दो, जो कि किताब का कह सकते हैं सैद्धांतिक दिल है। यहां वो अपनी पांच मुख्य धारणाएं बताते हैं, जो मिलकर ग्रेट पावर राजनीति की ये दुखद कहानी बनाती हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, बताइए क्या है वो पांच धारणाएं।
पहली, कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम अराजक अनार्किक है। मतलब कोई वर्ल्ड पुलिस या वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो देशों को कंट्रोल कर सके।
ठीक है।
दूसरी, हर बड़ी शक्ति के पास इतनी सैन्य क्षमता होती है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि आप कभी भी किसी दूसरे देश के इरादों पर 100% यकीन नहीं कर सकते। आज जो दोस्त लग रहा है, कल वो दुश्मन बन सकता है, नीयत बदल सकती है।
ये तो है, भरोसा करना मुश्किल है।
चौथी, हर देश का सबसे पहला मकसद है जिंदा रहना, अपनी आजादी, अपनी संप्रभुता बचाए रखना।
स्वाभाविक है।
और पांचवी, कि देश बेवकूफ नहीं है, वो अपनी सुरक्षा के लिए सोच समझकर, यानी तर्कसंगत तरीके से फैसले लेते हैं, वो भावनाओं में बहकर या अंदाजे से काम नहीं करते।
अच्छा, तो ये पांच बातें हैं, कोई बॉस नहीं, सबके पास हथियार, किसी पर भरोसा नहीं, सबको जीना है और सब समझदार हैं।
हाँ, और मियरशाइमर कहते हैं कि जब ये पांचों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो तीन तरह का व्यवहार सामने आता है।
क्या?
पहला, डर। क्योंकि आप दूसरों के इरादों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आप हमेशा डरे रहते हैं।
दूसरा,
आत्मनिर्भरता। क्योंकि कोई बचाने नहीं आएगा, आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी।
और तीसरा,
तीसरा और सबसे अहम, शक्ति को अधिकतम करना,
पावर मैक्सिमाइजेशन।
क्योंकि डर है और खुद ही अपना बचाव करना है, तो सबसे सुरक्षित तरीका क्या है?
सबसे ताकतवर बन जाओ।
एग्जैक्टली, इतना ताकतवर कि कोई हमला करने की हिम्मत ही ना करे। और इसका मतलब है अपने इलाके का क्षेत्रीय अधिपति बन जाओ।
तो ये है पूरी थ्योरी का निचोड़।
हाँ, काफी हद तक। फिर अगले अध्यायों में वो शक्ति या पावर को थोड़ा और खोलते हैं। वो संभावित शक्ति, लेटेंट पावर, और सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, में फर्क करते हैं।
संभावित शक्ति मतलब?
मतलब देश की दौलत और आबादी। ये वो चीजें हैं जिनसे भविष्य में मिलिट्री ताकत बनाई जा सकती है, जैसे किसी का बैंक बैलेंस और जमीन जायदाद।
अच्छा।
और सैन्य शक्ति, वो है असल मिलिट्री, यानी सेना, हथियार, जो अभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो दौलत जरूरी है, क्योंकि उसी से सेना बनती है, हथियार खरीदे जाते हैं।
ठीक है। और मिलिट्री पावर में भी वो किसी एक चीज को ज्यादा अहम मानते हैं?
हाँ, वो जमीनी सेना, लैंड पावर को सबसे अहम मानते हैं, सेना को।
नौसेना या वायुसेना को नहीं? क्यों?
उनका तर्क है कि आखिर में किसी इलाके पर कब्जा करना और उसे कंट्रोल में रखना, ये काम तो पैदल से नहीं कर सकती है। नेवी और एयरफोर्स मदद जरूर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जमीन तो आर्मी ही जीतती है।
अच्छा।
और यहीं पर उनका वो मशहूर आइडिया आता है, पानी की रोक शक्ति, स्टॉपिंग पावर ऑफ वॉटर।
हाँ, ये मैंने सुना है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि बड़े बड़े समुद्र, जैसे अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर, एक बहुत बड़ी रुकावट है। किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी सेना और साजो सामान समुद्र पार भेजकर दूसरे महाद्वीप पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। बहुत मुश्किल, बहुत महंगा।
तो इसका नतीजा क्या निकलता है?
नतीजा ये कि वैश्विक आधिपत्य, मतलब पूरी दुनिया पर राज करना, ये बस एक सपना है, ये हो नहीं सकता। कोई भी देश ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है?
अपने इलाके का राजा बन सकते हैं।
बिल्कुल, अपने क्षेत्र का, अपने महाद्वीप का क्षेत्रीय अधिपति बन सकता है। जैसे मियरशाइमर मानते हैं कि अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध में ये हासिल किया है।
अच्छा, तो देश ताकत बढ़ाने के लिए करते क्या हैं, क्या तरीके अपनाते हैं?
हाँ, अध्याय पांच में वो रणनीतियों की बात करते हैं। सबसे सीधा तरीका तो युद्ध वॉर है, पर वो खतरनाक है, महंगा है।
हाँ, वो तो है।
दूसरा तरीका है संतुलन बनाना, बैलेंसिंग। अगर कोई एक देश ज्यादा ताकतवर हो रहा है तो बाकी देश क्या करते हैं? या तो वो खुद हथियार जमा करना शुरू कर देते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं, इसे कहते हैं इंटरनल बैलेंसिंग।
और
या फिर वो आपस में गुट बना लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं उस ताकतवर देश के खिलाफ, इसे कहते हैं एक्सटर्नल बैलेंसिंग।
ठीक है, और कोई तरीका?
हाँ, एक तीसरी रणनीति है जो थोड़ी चालाकी वाली है, बक पासिंग।
बक पासिंग, ये क्या होता है?
इसका मतलब है कि अगर कोई खतरा मंडरा रहा है तो उसका सामना करने की जिम्मेदारी किसी और देश पर टाल दो, खुद पीछे हट जाओ, इंतजार करो कि दूसरे लड़ें, वो कमजोर हों।
अच्छा, मतलब मुसीबत दूसरे के सिर मर दो।
हाँ, कुछ वैसा ही। ये अक्सर देशों को ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें उनका खुद का रिस्क और खर्चा कम होता है।
दिलचस्प।
इसके बाद की जो अध्याय हैं 6, 7, 8, उनमें वो इतिहास से उदाहरण देकर अपनी बातों को साबित करने की कोशिश करते हैं। नेपोलियन का फ्रांस, पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जर्मनी, इंपीरियल जापान,
इन सबको वो कैसे देखते हैं?
वो इन सबको ऐसे देशों के तौर पर देखते हैं जो क्षेत्रीय आधिपत्य हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक वैसा ही जैसा उनका सिद्धांत कहता है। वो ज्यादा से ज्यादा ताकत चाहते थे।
और अमेरिका के बारे में क्या कहते हैं?
अमेरिका का विश्लेषण भी काफी अहम है। वो उसे एक कामयाब क्षेत्रीय अधिपति मानते हैं जिसने पहले अपने पड़ोस में यानी अमेरिका में अपना दबदबा बनाया।
हाँ,
और फिर जब यूरोप या एशिया में कोई और ताकत जैसे जर्मनी या सोवियत यूनियन इतनी मजबूत होने लगी कि वो पूरे महाद्वीप पर हावी हो जाए, तो अमेरिका ने ऑफशोर बैलेंसर,
मतलब
समुद्र पार से दूर बैठकर दखल देना ताकि कोई एक देश यूरोप या एशिया पर पूरी तरह कब्जा न कर ले, वो संतुलन बनाए रखने के लिए बीच में कूद पड़ता था।
समझ गया। तो अमेरिका खुद दुनिया पर राज नहीं करना चाहता था, बस ये पक्का करना चाहता था कि कोई और भी न करे।
हाँ, मीरा शाइमर के हिसाब से यही, क्योंकि वैश्विक आधिपत्य तो वैसे भी मुमकिन नहीं है।
अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद आज सबसे ज्यादा चर्चा में है, अध्याय 9, चीन के बारे में। उसका शीर्षक ही है, क्या चीन शांति से उभर सकता है?
हाँ, और मीरा शाइमर का जवाब बहुत साफ है और थोड़ा चिंता पैदा करने वाला भी। वो कहते हैं नहीं।
नहीं, क्यों?
उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं अगर चीन की अर्थव्यवस्था ऐसे ही बढ़ती रही, वो अमीर और ताकतवर बनता रहा, तो वो क्या करेगा? वो इस दौलत को जबरदस्त मिलिट्री ताकत में बदलेगा।
और फिर?
और फिर वो वही करेगा जो इतिहास में हर उभरती हुई शक्ति ने किया है। वो एशिया में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करेगा। वो एशिया का क्षेत्रीय अधिपति बनना चाहेगा। वो चाहेगा कि अमेरिका और बाकी बाहरी ताकतें एशिया से दूर रहें।
और अमेरिका क्या करेगा उनके हिसाब से?
मीरशाइमर के सिद्धांत के मुताबिक अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि एशिया में चीन का राज हो, तो अमेरिका चीन को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, जी जान लगा देगा।
और नतीजा?
नतीजा, दोनों के बीच भयालक सुरक्षा मुकाबला, हथियारों की होड़, तनाव, शायद टकराव भी। मीरशाइमर कहते हैं कि ये किसी नेता की अच्छी या बुरी नीयत का सवाल नहीं है, ये सिस्टम का तर्क है, ये होना ही है।
बाप रे, ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है।
हाँ, इसीलिए किताब का नाम ट्रेजेडी है। और अंत में निष्कर्ष अध्याय में वो अपनी बात फिर दोहराते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की बनावट है, वही महान शक्तियों को ताकत के लिए लड़ने पर मजबूर करती है। स्थायी शांति, परमानेंट पीस, एक सपना है। भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा अतीत था, ताकत के लिए संघर्ष का मैदान।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या निकल कर आते हैं? पहली चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है संरचना का दबदबा।
हाँ बिल्कुल, मतलब देशों का बर्ताव इस बात से ज्यादा तय होता है कि दुनिया का सिस्टम कैसा है, बजाय इसकी कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो डेमोक्रेसी है या नहीं, उनके नेता कौन है वगैरह।
है ना सोचने वाली बात। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर अच्छे नेता आ जाएं तो सब ठीक हो जाएगा, पर क्या ये इतना आसान है? क्या हमारे पड़ोसियों से हमारे रिश्ते सिर्फ नेताओं पर निर्भर करते हैं, या भूगोल और ताकत का खेल ज्यादा बड़ा है?
सही सवाल है। दूसरा बड़ा थीम है सुरक्षा दुविधा, सिक्योरिटी डिलेमा।
ये क्लासिक आइडिया है।
हाँ, वो वाला कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करते हैं और वही चीज दूसरे को डरा देती है।
एग्जैक्टली।
आप हथियार खरीदते हैं अपनी रक्षा के लिए, आपका पड़ोसी उसे खतरा समझता है और वो भी हथियार खरीदता है। नतीजा, कोई ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करता, बल्कि तनाव और बढ़ जाता है।
ये तो हम भारत पाकिस्तान या भारत चीन के केस में बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक का रक्षा बजट बढ़ता है तो दूसरे की चिंता बढ़ जाती है।
बिल्कुल, तीसरा अहम पॉइंट है सापेक्ष लाभ बनाम निरपेक्ष लाभ का।
ये थोड़ा समझाइए।
देश सिर्फ ये नहीं देखते कि किसी समझौते से उन्हें कितना फायदा हो रहा है, निरपेक्ष लाभ, वो ये ज्यादा देखते हैं कि उनके मुकाबले उनके प्रतिद्वंद्वी को कितना फायदा हो रहा है, सापेक्ष लाभ।
अच्छा।
हाँ, अगर किसी डील से दुश्मन को आपसे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो हो सकता है आप वो डील करें ही नहीं, भले ही उससे आपको भी कुछ फायदा हो रहा हो, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो जाए।
ये तो सहयोग को और मुश्किल बना देता है।
बिल्कुल। चौथा थीम है भूगोल का महत्व, ज्योग्राफी मैटर्स।
हाँ, खासकर वो पानी की रोक शक्ति वाली बात।
हाँ, कि समुद्र पार करके कब्जा करना मुश्किल है। हाँ, ये याद दिलाता है कि ताकत की भी अपनी सीमाएं होती हैं। भूगोल आपकी किस्मत तय करने में बड़ा रोल निभाता है। और भारत के संदर्भ में सोचिए, हमारी इतनी लंबी कोस्टलाइन है, उत्तर में हिमालय है, इतने सारे पड़ोसी हैं, ये सब हमारी विदेश नीति के विकल्प कैसे तय करते हैं।
सही बात है। और पांचवा, जो आजकल सबसे ज्यादा रिलेवेंट लगता है, चीन का अवश्यंभावी टकराव, चाइनाज इनेविटेबल कॉन्फ्लिक्ट।
हाँ, मेयर शैमर का ये तर्क कि चीन का उदय शांतिपूर्ण हो ही नहीं सकता, अमेरिका से उसका टकराव लगभग तय है, और ये किसी की पसंद या नापसंद का मामला नहीं, ये सिस्टम की मजबूरी है।
और ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा होता है तो इसका भारत जैसे देशों के लिए क्या मतलब होगा।
बिल्कुल।
इस किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो एकदम से याद रह जाती हैं, कुछ तीखे यादगार विचार या कोट्स।
हाँ, हैं। जैसे पहला सार निकाला जा सकता है, किसी भी महान शक्ति के लिए सबसे अच्छी स्थिति है सिस्टम का अधिपति बनना, मतलब सिर्फ सुरक्षित होना काफी नहीं है, लक्ष्य है टॉप पर पहुंचना, हावी होना, यही चीज कंपटीशन को हवा देती है।
ठीक है। और
दूसरा, वो जो थोड़ी डरावनी सी कहावत का सार है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बेरहम जंगल में गॉडज़िला बनना बैम्बी, हिरन का बच्चा बनने से बेहतर है।
हाँ, ये काफी कठोर लगता है।
मतलब सीधा है, इस दुनिया में अगर आप कमजोर हैं तो आप शिकार बन सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ताकतवर होना ही जिंदा रहने की सबसे पक्की गारंटी है।
और तीसरा?
तीसरा, इरादों के बारे में। आप कभी पक्के तौर पर नहीं जान सकते कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है।
हाँ, ये तो पहले भी बात हुई।
क्योंकि इरादे बदल सकते हैं, उन पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए देश किस पर ध्यान देते हैं, क्षमताओं पर, मिलिट्री ताकत पर, और इसी से डर और अविश्वास का माहौल बनता है।
सही है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो सारे विचार हैं, जो कुछ हद तक निराशाजनक भी लगते हैं, इनका हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया को समझने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
देखिए, कई तरीके हैं। सबसे पहले तो ये हमें अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को समझने का एक लेंस देता है। जब हम पढ़ते हैं कि दो देश शांति की बातें कर रहे हैं लेकिन बॉर्डर पर फौज बढ़ा रहे हैं, तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए।
हाँ, हम समझ सकते हैं कि शायद नेताओं के बयानों के पीछे कुछ और चल रहा है, सिस्टम का दबाव है।
बिल्कुल। ये हमें सतही बातों से परे देखने में मदद करता है। दूसरा, ये विदेश नीति के विश्लेषण में काम आता है। क्यों कोई देश किसी खास तरह से बर्ताव कर रहा है? शायद वो शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है या रीजनल हेजेमनी चाहता है।
ये हमें आदर्शवादी चश्मे के बजाय यथार्थवादी नजरिए से सोचने में मदद करता है, भले ही हम उस देश की नीतियों से सहमत ना हो।
सही कहा।
तीसरा, ये इतिहास के पैटर्न को पहचानने में मदद करता है।
ग्रेट पावर्स के बीच झगड़े बार बार क्यों होते रहे हैं, ये सिद्धांत एक फ्रेमवर्क देता है जिससे शायद हम इतिहास की घटनाओं को बेहतर समझ सकें।
और शायद व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ सोचने को मिलता है।
हाँ, शायद ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया को बदलना वाकई इतना आसान है, क्या सिर्फ अच्छी नीयत और अच्छे इरादे काफी हैं। मेयर शैमर का जवाब तो यही लगता है कि नहीं, शायद सिस्टम का जो तर्क है वो बहुत शक्तिशाली है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई?
मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि कैसे बिल्कुल तर्कसंगत व्यवहार, मतलब अपनी सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश भी अनजाने में आपको संघर्ष की तरफ धकेल सकती है। ये जो त्रासदी वाला पहलू है ना, ये वाकई बहुत गहरा है। और दूसरी चीज, भूगोल का महत्व, वो पानी की रोक शक्ति वाली बात। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है लेकिन ये चीज आज भी कितनी सच लगती है, ये याद दिलाती है कि हर चीज की एक सीमा होती है, ताकत की भी।
हाँ, और मेरे लिए शायद वो संरचना की ताकत वाली बात, ये सोचना कि नेता चाहे कितने भी अच्छे इरादे वाले क्यों ना हो, वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं जो उन्हें कुछ खास तरीकों से सोचने और बर्ताव करने पर मजबूर करता है। ये थोड़ा परेशान करने वाला विचार है, पर लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हकीकत के ज्यादा करीब है।
हाँ, ये हमें दुनिया को शायद थोड़ा कम उम्मीदों से और ज्यादा हकीकत की नजर से देखने में मदद करता है।
बिल्कुल, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।